भजन संहिता 72। भजन 72 को सुलेमान का गीत कहा गया। इस भजन को पढ़ने से हमें पता चला है कि ये भजन सुलेमान के समय से बहुत आगे बढ़ता है और वास्तव में वो उस पुत्र की भविष्यवाणी है जिसकी प्रतिज्ञा दाऊद से की गई थी, अर्थात यीशु मसीह की प्रतिज्ञा जो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा, राज्य करेगा और न्याय एवं धार्मिकता को सदा के लिए स्थापित करेगा। अतः भजन 72 अपने पुत्र सुलेमान के लिए दाऊद की प्रार्थना से बहुत आगे बढ़ता है। वो दाऊद के सिंहासन पर यीशु मसीह के राज्यकाल का वर्णन करता है, इसलिए भजन 72 का दोहरा अनुवाद किया जाता है। भजन 72 पद 1। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तब उसका पहला कार्य पृथ्वी का न्याय करना होगा। वो सब देशों को न्याय के लिए इकट्ठा करेगा। राजा का न्याय कर, राजपुत्र को अपनी धार्मिकता सिखला। भजन 72 पद 2 से लेकर 7 तक। वो तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वो प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वो घास की खूंटी पर बरसाने वाले मेह और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। भजन के शब्दों में हम देखते हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। इन शब्दों से ये प्रतीत होता है कि ये भजन सुलेमान से बहुत आगे परमेश्वर की प्रतिज्ञा के धर्मी राजा तक जाता है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दाऊद से की थी कि वे उसकी राजगद्दी पर बैठेगा और जब तक चंद्रमा रहेगा उसका राज्य का अंत ना होगा। भजन 72 पद 8। वो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। प्रभु का राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर स्थापित होगा। भजन 72 पद 9 से लेकर 11 तक। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तर्शीश और दीप द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे। शेबा और सबा दोनों के राजा द्रव्य पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे। जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। फिलिप्पियों 2:10-11 पद में, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पृथ्वी के सब राजा इकट्ठे होंगे और भेंट ले आएंगे और यरूशलेम में उसके विभिन्न लोग स्तुति ले आएंगे। ये होगा प्रभु के राज्य का महिमामय युग। हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी के राजा इकट्ठे होंगे और अपनी भेंट और उपहार लाएंगे। ये पृथ्वी के राजा कौन है? प्रकाशित वाक्य 1:5-6। जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। पवित्र लोग स्वर्ग में उद्धार का गीत गाते हैं, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति के लिए राजाओं और याजकों को बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये कलीसिया है। अतः यहां जो लिखा है कि राजा उसके सामने झुकेंगे, वास्तव में आप लोगों के लिए लिखा गया है, उसकी कलीसिया और उसके राज्यकाल में आपका माननीय स्थान। भजन संहिता 72 पद 12 से लेकर 19 तक। क्योंकि वो दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा, वो कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा, वो उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वो तो जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत से अन्न होगा, जिसकी बाले लेबनोन के देवदारुओं की नाई झूमेगी और नगर के लोग घास की नाई लहलहाएंगे। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे, सारी जातियां उसको भाग्यवान कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इसराइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म केवल वही करता है, उसका महिमायुक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। यशे के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। इस तरह हम भजन संहिता के दूसरे भाग के अंत में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भजन संहिता 5 भागों में विभाजित है और हर भाग का अंत महिमा घोष से होता है। हमें यहां महिमा का वर्णन देखने को मिलता है। सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन और आमीन। इस तरह यशे के पुत्र दाऊद की प्रार्थना का अंत होता है। अब हम भाग 3 में प्रवेश करेंगे, जहां हम आसाफ के भजनों को देखेंगे। आसाफ प्रधान वादक था, वो दाऊद के द्वारा प्रधान वादक ठहराया गया था। हो सकता है आसाफ प्रधान वादक की उपाधि हो, इसलिए आसाफ के भजन प्रधान वादक के लिए हो, परंतु ये जरूरी नहीं कि वो ही व्यक्ति रहा हो। कुछ भजन जो यहां आगे हैं, जिन्हें आसाफ का भजन कहा गया है, वास्तव में दाऊद के राज्यकाल के बाद के हैं। भजन इसराइल देश के लिए लिखे गए थे, क्योंकि उनके शत्रुओं के द्वारा इसराइल तबाह कर दिया था। ये भजन सुलेमान के राज्यकाल के बाद के हैं।